ये मन नित ही दुविधा धारी साची सीख से उतरे पारी। ये जो मेरा मन है या सबका मन है, इसके अंदर हमेशा दुविधा बनी रहती है। जिस चीज में सुख की अनुभूति करता है या सुख की कल्पना करता है, वो चीज इसको मिल भी जाए, लेकिन मिलने के बाद फिर कुछ देर का सुख होता है, कुछ देर की मन को चैन मिलती है, उसके बाद पुनः बेचैन हो जाता है। कारण ये दुविधा है कि जिस चीज की मैं कल्पना कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं या इच्छा कर रहा हूं, वो चीज मुझको संतुष्ट कर देगी, ये मन के अंदर एक दुविधा बनेगी। दुविधा क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। कोई व्यक्ति भी कैसा भी फैशन क्यों ना कर ले, दूसरों को देख के वो उसकी नकल करने की कोशिश तो करता है। कोशिश इसीलिए करता है कि इस फैशन को करके जितना सुंदर ये प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, उसको बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी, मैं भी इसी प्रकार संतुष्ट हो जाऊंगा यदि मुझको भी ये चीज मिल जाए। लेकिन सारी जिंदगी फैशन करने के पश्चात भी वो दूसरों को देख देख के ईर्ष्या तो बढ़ा लेता है, बेचैनी तो बढ़ा लेता है, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं हो पाता। इसीलिए ये जितना भी ये बाहरी नकल का जीवन है, ये दुविधाधारी है। आप बुद्धि का जो निर्णय है इसके बारे में, इससे मुझको संतोष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ये कभी जीवन में संभव है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। तो इसका इलाज वो कहते हैं साची सीख से उतरे पाए। सच्ची शिक्षा यदि तो ग्रहण कर ले, और वो सच्ची शिक्षा देता कौन है, वो केवल सत्पुरुष देते हैं, अवतार देते हैं, या सदगुरु देते हैं, या संत देते हैं। यदि वो शिक्षा तो ग्रहण कर ले, तब इस दुविधा से तो मुक्त हो सकता है। तेरी परेशानी हमेशा के लिए हल हो सकती है, मन की अशांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस मन का नहीं और उपाय, सत्पुरुषों का जीवन ध्याय। तो इस मन रूपी दुविधा से छूटने का, मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, सत्पुरुषों के जीवन पर गहराई से विचार किया जाए, उनके जीवन का गहराई से अध्ययन किया जाए, उनके जो विचार हैं, उनके जो मार्गदर्शन हैं, उस पर गहराई से चिंतन किया जाए। तब ये सच्ची शिक्षा जब तेरे मन के अंदर बैठेगी, तेरी बुद्धि के अंदर बैठेगी, तब तेरी ये मन की दुविधा दूर हो सकती है। एक हमारा जीवन है या हमारे घर में परिवार का जीवन है, हम देखते हैं कि बालक जन्म से लेकर और जब तक वो बड़ा होता है, जब तक हमारे बंधन में रहता है, हम उसको बेचैन ही देखते हैं, कामना करते रहते हैं किसी का से संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए, लेकिन पालन करने के पश्चात अंत में हम थक जाते हैं कि कब ये बड़ा होगा, कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, कब हमारा बोझ उतरेगा। अंदर की बात है, लेकिन यदि हम सत्पुरुष का जीवन देखें, बालक हमारे घर में भी है, तो सत्पुरुष भी एक दिन बालक होता ही है, लेकिन उसके जीवन की जब ध्यान दें हम, तब अंतर पता लगता है। शरीर देखने में एक ही जैसा है, लेकिन मन की हालत में कितना बड़ा अंतर। महाराज जी भी कभी बालक तो थे ही, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़े, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उस समय भी उनका ये हाल था कि जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो बस्ता तो साथ में होता था, किताबें तो साथ में होती थी, लेकिन रास्ते में जहां भी उनको एकांत मिलता था, बस्ता एक तरफ रख के ईश्वर के ध्यान में वो लीन हो जाते थे। लेकिन बाकी बच्चों की चंचलता देखो, मन की क्या हालत होती थी, वो दौड़ लगाते थे जल्दी से घर पहुंचे, कुछ खाने को मिलेगा या खेलने को मिलेगा या मौज मस्ती करने को मिलेगी। तो मन अन्य बालकों का भी है, मन मंगत का भी है, तो बालकों में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन बालक मंगत का जो मन है वो कहां आनंद की तलाश कर रहा है, कहां चैन की तलाश कर रहा है, उस मन में दुविधा नहीं है। उसको पता है चैन अंदर ही है, इसलिए सारी बेचैनी बाहर की छोड़कर वो एकांत में कहीं भी को बैठ जाता है और प्रभु की याद में लीन हो जाता है। तो मन की चंचलता बचपन में एक बालक के अंदर कितनी होती है, यह हमको पता है इस बात। लेकिन बालक मंगत भी, बालक होने के पश्चात भी उसके मन की चंचलता ना के बराबर। मन ईश्वर के आनंद को अंदर ही चखना चाहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। वो अंदर का आनंद है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं है उसकी। तो एक उस बालक की हालत देखो जिसके मन ने ईश्वर का आनंद चखा है, पूर्व जन्म में जिसने साधना की है, ईश्वर भक्ति की है, किसी गुरु की किसी शास्त्र की बात का पालन किया है, उसको समझा है, तो जो संस्कार मन के अंदर इकट्ठे हुए जब पुनर्जन्म हुआ तो मन तो वही है, शरीर बदल गया। तो बेचैन शरीर नहीं हो रहा है, बेचैन मन हो रहा है। तो मन के अंदर संस्कार यदि ईश्वर के हैं, संस्कार यदि सतमार्ग के हैं, तो अगले जन्म लेने के पश्चात भी मन की क्या दशा होती है ये बालक मंगत को देख के अंदाज लगाया जा सकता है। उनकी सीख पढ़ के, उनकी कथा पढ़कर, उनका जीवन पढ़कर ये हमको अच्छी तरह से पता लग जाता है उस बालक के मन की बचपन में ही क्या हालत है। रात्रि को भी माँ जब देखती थी बालक बैठा हुआ, वो सोचती थी शायद डर गया होगा, कोई स्वप्न देख लिया होगा, कहती थी मंगत सोता क्यों नहीं, कहते थे माँ सो जाता हूं, लेट जाते थे। वो बनावटी लेटना था, नींद तो आती नहीं थी, अंदर तड़प जो है वो तो प्रभु मिलन की थी। तो बाल अवस्था में भी मन और मन में कितना बड़ा अंतर होता है। हमारे घर में भी बालक होते हैं, एक सीधा साधा बालक होता है, एक बड़ा तेज तर्रार बालक होता है, बड़ा शैतान होता है, बड़ा तंग करता है माता पिता को, सोने भी नहीं देता। तो अंतर कहाँ है? अंतर केवल मन के अंदर ही है, जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सारा शरीर का जो इस्तेमाल होता है वो मन को खुश करने के लिए ही होता है। इसीलिए जब तक इस मनोविज्ञान का आपको पता नहीं है, हमारा मानव जन्म पूरी तरह से निरर्थक ही बीत जाता है, नकल करते करते अकल कभी आती ही नहीं। इस संसार की बनावट देखकर यदि आप अकल सीखना चाहो तो अकल नहीं आएगी। अकल तो वहीं से आएगी जिसका मन ईश्वर में रमा हुआ है। कभी भी अकल आई तो वहीं से अकल आएगी। तो बचपन में महाजी की हालत थी, और यदि हम उनकी युवा अवस्था देखें तो हम जानते हैं कि जब युवा अवस्था आती है तो इंद्रियां कितनी चंचल हो जाती है, कितनी संसार के भोगों की तरफ लालायित हो जाती है, और सारी बुद्धि का प्रयोग हमारा इसी वास्ते होता है कि मन की इच्छा किस तरह से पूरी करें। लेकिन यदि गुरुदेव की युवा अवस्था देखी जाए, उनका क्या हाल था? माँ कह रही है मंगत कल को घर में कुछ खाने के लिए नहीं, वो युवा क्या कहता है कि माँ कल होने तो दे, और वो चले जाते हैं पीर फजा जंगल। अगले दिन जब सूर्योदय होता है, उसके पश्चात जब घर वापस लौटते हैं तो उनको याद आता है कि माँ ने कहा था घर में कुछ खाने को नहीं। जब घर आए, माँ से मिले, तो वही प्रश्न किया उन्होंने, माँ कल तुम कह रहे थे घर में कुछ खाने को नहीं, तो कहती है मंगत से, मंगत खेत से साग तोड़ लाई थी, पड़ोसी से छाछ मांग ली थी, उस छाछ के अंदर उस साग को पकाया है। तो मंगत कहता है कि मां वही लाओ। तो कटोरे में जब वो साग उनके लिए आता है तो मां जी बड़े प्रेम से उस साग को खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। और इस तृप्ति की बात वो एक दिन जब उनके शिष्य बन गए, गुरु बन गए जब वो, तब बताते हैं अपने शिष्यों को, इस घटना के बारे में बताते हैं। फिर क्या कहते हैं वो, ये देखिएगा, ये युवा शरीर है। वो कहते हैं कि जो स्वाद उस साग में उस दिन आया था, उसके बाद मैं नहीं जानता किसी चीज में और किसी स्वाद। युवा अवस्था में जो हमारा मन कितना चंचल होता है भोगों के लिए, कितना छलांगे मारता है, लेकिन गुरु का शरीर भी युवा था, लेकिन मन की क्या हालत थी, वो छाछ में, छाछ के साग में ही इतना तृप्त हो गया कि सतपुरुष तो झूठ बोलते नहीं, तो जो स्वाद उस साग में आया था वो फिर किसी चीज में नहीं है। ये इनकी युवा अवस्था। अब प्रौढ़ावस्था देखिए, आदमी 40 का हो जाता है, 45 का हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में देखिए गुरु की क्या हालत थी। उस समय महाजी के कान में बड़ा तेज दर्द हुआ करता था। एक दिन अपने कमरे से या अपनी कुटिया से महाजी बाहर आए तो भगत जी और पंडित रामजी दास जी दोनों कपड़े धो रहे होंगे, कुछ बातचीत कर रहे होंगे, तो गुरुदेव आकर क्या बोलते हैं उनको, तुम यहां बातें कर रहे हो, तुमको गुरु की भी कुछ फिक्र है कि गुरु पर क्या बीत रही है। शिष्यों को पता था कि मां जी के कान में तकलीफ चल रही है, लेकिन पंडित रामजी दास जी ने जो उनसे खुली बातचीत कर लिया करते थे बिना संकोच के, उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया महाराज जी के आगे, महाराज जी इस समय तो आप अपने दर्द की दुहाई दे रहे हैं या दर्द का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रात जब खुले आसमान के नीचे आप ठंड में भी बैठ जाते हैं उस समय आपका दर्द कहां चला जाता है। अब मां जी क्या बात कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की बात है। प्रेमी जब मन ही नहीं रहा तो तकलीफ कैसी महसूस कौन करेगा। जब मन ही नहीं रहा तो तकलीफ कैसी, विचार करो मन हमारा कितना प्रबल है। इसके लिए जीवन लोग खत्म कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, मां बाप को भी तकलीफ देना शुरू कर देते हैं लोग, यहां तक कि उनका उनका कत्ल तक कर देते हैं। क्या मन के लिए हम क्या नहीं करते। लेकिन गुरु कह रहा है कि प्रेमी जब मन ही नहीं रहा तब तकलीफ कैसी। इसका मतलब मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट चीज है, मन कुछ भी नहीं है। आपकी जो इच्छाएं आपके अंदर उठती हैं उन इच्छाओं का समूह कह लीजिए उसको, उन संस्कारों का समूह कह लीजिए जिन इच्छाओं की पूर्ति के कारण आपके अंदर संस्कार बन जाते हैं, बार बार उन संस्कारों के कारण याद आती है उन चीजों की, उन भोगों की याद आती है, उस वातावरण की याद आती है, उन लोगों की याद आती है। तो मन के अंदर संकल्प उठते रहते हैं जिस प्रकार समुद्र के अंदर तरंगे उठती रहती हैं, वास्तविकता ऐसी कुछ भी नहीं, और जीव उसके बंधन में आ जाता है, बुद्धि उसके बंधन में आ जाती है, और उसको उस बेचैनी को से मुक्ति के लिए बुद्धि प्रोग्राम बनाती है, परिस्थितियां तैयार करती है और फिर उसका उपभोग करती है। तो जीव इस क्लेश में कितना परेशान रहता है, कितना बेचैन रहता है, कितनी दुविधा इसके अंदर बनी रहती है, इसका विज्ञान ये जानता नहीं है। इसीलिए इसका कोई इलाज भी नहीं करता। वो यही जानता है जो इच्छा परेशान कर रही है, जो जरूरत परेशान कर रही है, उसको मैं यदि पूरी कर लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन वो दिन जीवन में आता ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलता जब ये जीव संतुष्ट हो जाए मन की इच्छा को लेकर। इसीलिए जो सत्पुरुषों का जो रास्ता है वो कुछ दूसरा है। वो कहते हैं सत परतीत अंतरधारी सतपुरुषों का आदर्श विचारी उपजे चाओ सतमार्ग पाई जतन करे सतसार लखाई। सतपुरुषों का जो आदर्श है जो उन्होंने हमारे सामने अपने जीवन के द्वारा पेश किया और जो इस वाणी के द्वारा विज्ञान के द्वारा उन्होंने हमको शिक्षा दी, उसको जब हम गहराई से समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं तब कहते हैं कि हमारे अंदर सत प्रतीत आ जाती है। ईश्वर का निश्चय पक्का हो जाता है कि ईश्वर अंदर है और वो सर्व समर्थ है और हर मुसीबत का हल उसकी ओर जाने से मिल जाता है। मुसीबत कौन सी? मन की चंचलता ही इस जीव की मुसीबत है और संसार में जीव के लिए कोई मुसीबत क्यों मुसीबत नहीं है? क्योंकि यह देह पूरी तरह से प्रारब्ध के अधीन है और इसका लालन पालन, इसकी देखभाल सब कुछ ईश्वर खुद कर रहा है। लेकिन मन, इसकी देखभाल मैंने करनी है, ये ईश्वर हुक्म में नहीं चल रहा है, ये मन मेरा है। चाहूं तो इसको चंचल कर सकता हूं, चाहूं तो इसको स्थिर भी कर सकता हूं। जैसे बालक मंगत ने अपना मन स्थिर कर दिया, ये मेरे हाथ में है। इसीलिए ये सारी आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक एजुकेशन। तो यदि उसके सत्पुरुष के आदर्श को मैंने देखा, उस पर विचार किया, उसके ज्ञान को मैंने सीखने की कोशिश की, तब कहते हैं कि उपजे चाओ सतमार्ग पाई जतन करे सतसार लखाई। जब उस पर ध्यान देता हूं, उस पर चिंतन मनन करता हूं, तब मेरे अंदर उस मार्ग पर आगे चलने का चाव पैदा हो जाता है, इच्छा पैदा हो जाती है, उमंग पैदा हो जाती है। उस उमंग के कारण, उस इच्छा के कारण फिर मैं उस प्रभु की याद करने में सिंसियर हो जाता हूं। संसार में जीवन को अपने पवित्र करने में मेरे अंदर दृढ़ निश्चय आ जाता है। तो सांसारिक जीवन पवित्र मर्यादा का और अंदर प्रभु की याद, ये मेरा मार्ग बन जाता है। और ये सत्यत्न करते करते एक दिन जो सत्सार है अर्थात जो ईश्वर है वो इस देह के अंदर ही मुझको अनुभव होने लगता है, तब जाकर मेरी तृप्ति, तब पता लगता है कि गुरु कितना उपकारी है, जिसने कहां मुझको दलदल से, कीचड़ से निकालकर कमल पर बिठा दिया है, जहां आनंद है, जहां खुशबू है, जहां चैन। तो सत्पुरुष की भी यही स्थिति होती है कि मन उनका निर्मल हो जाता है। मल कहते हैं गंदगी को। कौन सा मल है? पांच विकार का मल है हमारे मन के अंदर। तो ये पांच विकार का मल साफ हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। तो उस निर्मल मन के साथ होता क्या है, वो वाणी कह रही है, अंतर सुरत शब्द समावे निर्देह पद को बूझे नाम रूप सब खेद विनाशे घट अमरत बानी सूझे। वाणी बड़ी गहरी है लेकिन क्या कह रही है कि अंदर सुरत शब्द समावे निर्देह पद को बूझे। क्या हालत हो जाती है जीव की कि सुरत जो कहते हैं यही वास्तव में बुद्धि भी है, यही वास्तव में अटेंशन भी है, यही वास्तव में ध्यान भी है। मैं जब सिमरन करता हूं या किसी संसार की वस्तु को ध्यान से देखता हूं तब कहते हैं कि मेरा ध्यान उस वस्तु में टिक गया है, उसी ध्यान का दूसरा नाम सुरत भी है, उसका ही नाम अटेंशन भी है, उसी का नाम एकाग्रता भी है। तो मैं जानकर किसी वस्तु पर अपने आप को एकाग्र करता हूं, यही कहें अपने मन को एकाग्र करता हूं, उस पर टिकाने की कोशिश करता हूं, तो इसी को सुरत कहते हैं। तो कहते हैं कि अंतर सुरत शब्द समावे, साधना करते करते मेरी अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि मेरी सुरत शब्द में समा जाती है। शब्द कहते हैं ब्रह्म को, नाद को भी शब्द कहते हैं, उसमें ये सुरत समा जाती है, अर्थात उस शब्द के साथ एक हो जाती है। तो जो जब ये एक हो जाती है उस ईश्वर के साथ, तब कहते हैं कि निर्देह पद को बुझे, तब इस जीव को उस निर्देह बिना देह के जो स्थिति है, जो अवस्था है, उसका बोध होता है, उसमें ये जीव स्थित हो जाता है। वहां पता लगता है कि गुरु क्या है, गुरु हमको क्या देने आया था, क्या दे गया, कि मैं मन के चक्कर में आके कितने कष्ट उठाता था, कितने जन्मों से कष्ट उठाता था, कितनी गलतियां करता था, पांच विकार में फंसा रहता था, लेकिन गुरु की बात मानी तो मुझको वो पद प्राप्त हो गया, वो स्थिति प्राप्त हो गई जहां दुख नाम की चीज ही नहीं है, बेचैनी नाम की चीज ही नहीं है, केवल शांति है, या शांति का सागर है जो दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन ही नहीं सकती। अब बताइए ये देह कितनी कीमती चीज है, मेरा वो पद भी, मेरी वो स्थिति भी यहां मौजूद है इस देह के अंदर, जिसको दसवां द्वार कहते हैं, जिसको मोक्ष का स्थान कहते हैं। तो ये सुरत उस अपने निज स्थान में जाकर शांत हो जाती है, क्योंकि अमर पद मिल जाता है जिसको निर्वाण कहते हैं। नाम रूप सब खेद बिना से घट अमृत बानी सूझे, और अंदर साधना करते करते जो नाम रूप का दुनिया है, जिस कोई वस्तु देखें, कोई मनुष्य याद आ जाए, कोई व्यक्ति याद आ जाए, तो उसका नाम याद आता है, या उसका रूप याद आता है, या उसके गुण याद आते हैं, या उसके कर्म याद आते हैं। तो हर वस्तु में नाम रूप गुण कर्म होता है। तो ये सब खेद है जीव के लिए, क्योंकि मन इसमें बेचैन रहता है, हम देखा देखी तो बेचैन होते हैं दूसरे, तो नाम रूप गुण कर्म के कारण ही मेरा मन बेचैन होता है। तो ईश्वर भक्ति इसलिए है कि नाम रूप गुण कर्म से मेरा मन मुक्त हो जाए। तो वो अंदर ही हो सकता है, बाहर रास्ता नहीं है उसका। इसीलिए जब ये गुरु की बात मानकर, गुरु की शिक्षा को मानकर, अपनाकर जब ये अंदर साधना करता है, तब कहते हैं कि नाम रूप सब खेद बिना से घट अमृत बानी सूझे। तो पहले क्या स्थिति होती है, घट अमृत बानी सूझे। तो अमृत बानी जो है, जिसको नाद कहते हैं, इस देह के अंदर उसका अनुभव होता है, और पूरी देह के अंदर वो नाद ही उसको कवर कर लेता है पूरी तरह से, उस नाद के अलावा कुछ अनुभव ही दूसरी चीज नहीं होती है, इसलिए उसको अमृत वाणी कहते हैं। अमृत वाणी है जो अंदर वो सुन रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जिसमें रस टपक रहा है, केवल वहां रस है, केवल वहां अमृत है। और उसमें जब वो स्थित हो जाता है, वो क्या है फिर, वो कहते हैं अमृत नाद नाम निर्वाण गुरुमुख बूझे पाए कल्याण। वो क्या है, अमृत नाद है जिससे मेरा मन पूरी तरह से रम गया है, और नाम निर्वाण, और वो साधना की वो अवस्था जब, जिसको हम नाम के यहां क्या मतलब है, नाम का मतलब है शब्द ब्रह्म से, जिसको हम सहज समाधि कह देते हैं, निर्विकल्प समाधि कह देते हैं, उसके कई नाम हैं। तो वो उस नाम में ये नाद लीन हो जाता है, उसमें ये जीव की परम अवस्था आती है, जिसको हम मोक्ष अवस्था कहते हैं, उसी का नाम कहते हैं कि नाम निर्वाण। तो जो नाम स्थिति, नाम की स्थिति है, जिसको निर्देह पद कह रही थी वाणी, वो निर्वाण है। तो वहां मन रूपी वाणी से इसकी, इसका परमानेंट छुटकारा हो जाता है, ये जीव अपने आप में परम तृप्त हो जाता है, और वही इसकी मोक्षी स्थिति है। इसलिए कहते हैं गुरुमुख बूझे पाए कल्याण। जो गुरुमुख जीवन व्यतीत करता है गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, और गुरु के जीवन को देखकर उनकी नकल करके यही कहिए उनसे, उनका आदर्श सीखकर जो उसको अपनाता है, तो उसकी एक दिन ये स्थिति आ जाती है कि वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त करके गुरुदेव ने अपने शरीर का त्याग किया। ओम धर्म सत्यम।